समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 8th ऑफ दिसंबर।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे दिन की चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी।
The 20th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage will begin today at Red Fort in New Delhi. The session will be chaired by Vishal V. Sharma, Ambassador and Permanent Delegate of India to UNESCO. India has nominated Diwali, the Festival of Light, Brotherhood, Compassion and Collective Celebration, as its submission for the UNESCO Intangible Heritage list this year. Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said the proposal, earlier reviewed by independent evaluation bodies, will be discussed during the session and the government is confident of a positive outcome. The six-day event aims at examining nominations submitted by the state's parties for inscription on the UNESCO ICH list, reviewing the status of existing elements and providing international assistance for safeguarding intangible cultural heritage. The inaugural ceremony for the session was held at Red Fort in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, External Affairs Minister S. Jaishankar said that besides being home to many UNESCO heritage sites, India has itself undertaken many projects to preserve and conserve heritage across the world. Dr. Jaishankar also expressed happiness with Indian sites of Hyderabad and Lucknow for being Indian cities of Hyderabad and Lucknow for being recognized as UNESCO City of Gastronomy. The minister also lauded UNESCO for protecting the intangible heritages.
Lucknow has recently joined Hyderabad as a UNESCO Creative City of Gastronomy, has also been widely appreciated in this country. Each recognition of intangible heritage has ripples well beyond the immediate decision. Your work not only evokes cultural pride and strengthens tradition, but impacts lives and livelihood as well. The world is a fundamentally pluralistic landscape, a landscape whose richness lies in its diversity.
गोवा पुलिस ने अरपोरा नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद क्लब के महाप्रबंधक और 3 कर्मचारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस आग में 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 6 घायल हो गए थे। पुलिस द्वारा नाइट क्लब के मालिकों, प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया है। अरपुरा नाओवा पंचायत के सरपंच को भी वर्ष 2013 में नाइट क्लब परिसर के लिए व्यापार लाइसेंस जारी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। श्री सावंत ने पहले नाइट क्लब में आग लगने की घटना की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और एक समिति गठित की थी। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
The Indian Institute of Technology, Jammu, will be hosting the grand finale of the Smart India Hackathon, SIH 2025, Software Edition, today and tomorrow. This marks the second consecutive year that IIT Jammu will host this prestigious nationwide innovation and technology event. The nation's brightest young innovators are gearing up to take on real-world challenges with creativity, passion and purpose, with 20 finalists teams competing across four transformative problem statements. SIH 2025 promises to be a powerhouse of talent, technology and bold ideas that can shape India's future. Prime Minister Narendra Modi will address the interact with the grand finale participants. India and European Union will resume talks in New Delhi today on a free trade agreement, FTA. The two-day negotiation session will commence today, marking another step forward in the long-standing effort to establish stronger economic ties between the EU and India. EU Ambassador to India, Hervé Delphin, while speaking at India's World Annual Conclave 2025, said the current negotiations represent fundamentally new phase, calling them EU-India FTA Negotiation 2.0. The EU is India's largest trading partner, with bilateral goods trade reaching $137.5 billion in 2023-24.
पुरुष हॉकी में भारत ने कल रात केप टाउन में तीन मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हरा दिया। भारत की ओर से शैलानंद लाकड़ा, आदित्य लालागे, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल किए, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए मुस्तफा कैसियम और विवे माबाटा ने गोल किया। दूसरा मैच आज भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे केप टाउन के हार्ट लेवाले स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा इस वर्ष की आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है। भारत अभी दुनिया में 7वें स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 12वें स्थान पर है।
ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस क्लिंच्ड द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉलोइंग अ 10th सीजन फिनाले एट द अबू धाबी ग्रां प्री यस्टरडे। Starting second, Norris was passed by teammate Oscar Piastri on the first lap, dropping to third. But finishing third was all he needed to secure the title. He defended well against Charles Leclerc, keeping himself out of DRS range and crossing the finish line in third. With this win, Norris became McLaren's first world champion since Lewis Hamilton in 2008 and 35th world champion in the F1 history.
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज से 13 दिसंबर तक लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के कार्यक्रम को के मद्देनजर सुबह 8 से रात 9 बजे तक यात्रा परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने केवल निर्धारित पार्किंग और मार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मार्गों से बचना है उनमें राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट तक रिंग रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, SPM मार्ग शामिल है। यातायात पुलिस ने सुचारू आवागमन और सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। दिल्ली की एक और खबर। राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और रात्रि चौकीदारों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सर्दियों में खुले में आग जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है, जिससे राजधानी को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर एक सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जो प्रदूषण से लड़ाई में एक प्रभावी सहायक है।
मूविंग ऑन टू चेन्नई नाउ मनोज। The Regional Conference on Environment concluded yesterday in Chennai with a strong call for a better and greener future. The last day concluded with the third session on challenges in protecting coastal zones chaired by Justice Suraj Govindra, Judge, High Court of Karnataka. He highlighted the severe environmental impact of human activities such as plastic pollution and urban development on marine life and coastal regions. He cited alarming examples, including a whale found with 100 plastic bags and microplastics detected in breast milk and placenta. The discussion emphasized the need for proactive measures by judges and authorities to prevent environmental degradation. Some more news from Chennai. Officers of Trichy Customs successfully intercepted a male passenger on specific intelligence regarding an attempt to smuggle contraband. The passenger arrived at Trichy from Bangkok on 25th of last month. After thorough examination of two check-in bags, officers recovered a significant consignment of exotic wildlife animals and birds. The seized species include one albino raccoon, six pygmy marmosets, six white-necked mynas, and one Sulawesi myna, along with four yellow-faced mynas, which were found dead. A case was booked under the Wildlife Act, and the accused person was arrested. The live wildlife species were safely recovered and subsequently repatriated. The matter is under investigation.
Ab Mumbai, Maharashtra ki khabar. मुंबई के मलाड के गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थित वलनई कॉलोनी नगर निगम स्कूल में रविवार को आयोजित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की जनसंपर्क पहल जन संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। कल के जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 50 से अधिक शिकायतों और समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना। उन्होंने कुछ शिकायतों पर तुरंत हस्तक्षेप किया और मौके पर ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तरी मुंबई के ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये वाहन किफायती, टिकाऊ और उचित दरों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए, जिससे चालकों की आय में वृद्धि हो सके। श्री गोयल ने रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ऑटो चालकों से बातचीत की और उनके साथ चाय भी पी।
न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु नाउ। Kempegowda International Airport, Bengaluru, has introduced Mobility Assist, a first-of-its-kind machine in India to ensure seamless boarding and deboarding for wheelchair users. Available on request during ticket booking, the device mechanically lifts and moves passengers to and fro from their wheelchairs, reducing physical strain and injury risk for both passengers and staff. The facility aims to significantly ease airport movement for passengers with reduced mobility, including children needing special care. Some more news from Bengaluru. Additional Chief Secretary for Urban Development Tushar Girinath announced that Bengaluru will upgrade 928 kilometers of roads by May, supported by 4,800 crore rupees in grants from the Greater Bengaluru Authority and the state government. Speaking at the Greater Bengaluru Authority office, he said the Bangalore Development Authority, BDA, will execute the Hebbal Short Underpass project costing over 2,000 crore rupees, which will run parallel to the proposed tunnel road. Girinath noted that 22,000 potholes have already been filled. Of the 392 kilometer of roads under development across city corporations, 157.40 kilometers are complete, with all work set to finish by January.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। कोलकाता में कल 5 लाख लोगों ने सामूहिक गीता पाठ किया। सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम ब्रिगेड परेड में औपचारिक दीप जलाकर शुरू हुआ। गीता पाठ से पहले वैदिक मंत्रों का जाप किया गया। इसके बाद भक्ति गीत का आयोजन हुआ और फिर धार्मिक ग्रंथ गीता को मंच पर रखा गया तथा आरती की गई। विभिन्न संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के संबोधन के बाद गीता पाठ शुरू हुआ। पहले 9वें और अंतिम अध्याय को एक साथ पढ़ा गया। इस साल धार्मिक ग्रंथ गीता की 5126वीं जयंती है। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग अब अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोग बंगाल की मौजूदा परेशानी तथा धार्मिक अहंकार के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राज्य के लोगों को लगन के साथ काम करते रहने की सलाह दी। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांतो मजुमदार, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए भाजपा नेता और संतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
Moving on to Hyderabad, the Telangana Rising Global Summit will begin at the Bharat Future City in Hyderabad this afternoon. The state government is expected to sign investment MOUs worth nearly 3 lakh crore rupees with leading national and international companies over the 2 days of the summit. The summit, conceived as an economic conclave, seeks to showcase the state's industrial strengths, highlights its innovation ecosystem, and generates larger scale employment opportunities for the youth. As per the government authorities, about 150 international delegates from 44 countries have confirmed participation, including over 40 representatives from the United States. Governor Jishnu Dev Verma will be formally inaugurating the event later this afternoon, for which over 2,000 domestic and foreign delegates will be present.
और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
यस मनोज, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉग और मिस्ट वुड अकर इन अर्ली मॉर्निंग। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 17 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्री। Hyderabad is expected to partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 14 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब बात करते हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह को लेकर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह आज से शुरू होकर इस महीने की 14 तारीख तक मनाया जा रहा है। यह भारत के कारीगरों के प्रति सम्मान और हस्तशिल्प के चिरस्थायी सांस्कृतिक महत्व का उत्सव है। कश्मीर की जटिल पश्मीना बुनाई से लेकर पंजाब की जीवंत फुलकारी, गुजरात की नाजुक कच्छ कढ़ाई और बिहार की प्रतिष्ठित मधुबनी चित्रकला तक हर क्षेत्र अपनी कलात्मक भाषा बोलता है। हस्तशिल्प केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है, वे ग्रामीण भारत की रीढ़ है।
Yes, I agree, Manoj. Handicrafts provide livelihood to millions, especially women and traditional artisan communities. They help preserve endangered art forms, support sustainable living, and promote India internationally. Every craft has a story of culture, community, and creativity. The week features a wide spectrum of activities and public engagements aimed at enhancing awareness, strengthening artisan livelihoods, and promoting the sector's socio-economic relevance in contemporary India. The handicraft sector remains a cornerstone of India's cultural and economic landscape. It preserves centuries-old traditions, supports millions of livelihoods, particularly in rural and semi-urban areas, and contributes significantly to the nation's export earnings. When we buy from local producers, artisans, farmers, and small businesses, we are directly investing in our nation.
स्थानीय उत्पाद अक्सर अपने साथ हमारे क्षेत्र की विशेषता, परंपरा और विशिष्टता लेकर आते हैं, चाहे वो हस्त निर्मित शिल्प हो, ताजा उपज हो या क्षेत्रीय विशिष्टताएं हो। ऐसा करके स्थानीय उत्पाद खरीदने से हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने, पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिसकी बराबरी बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुएं नहीं कर सकती। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के दौरान आइए हम अपना योगदान दें, स्थानीय उत्पाद खरीदें, हस्त निर्मित उत्पाद चुनें और अपने कारीगरों का समर्थन करें, क्योंकि हर बार जब आप कोई हस्तशिल्प खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक वस्तु ही नहीं बल्कि भारत का एक टुकड़ा घर ले जा रहे होते हैं। और अब समय हो चला है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 8 दिसंबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
In 1923, the Treaty of Friendship was signed between Germany and America. In 1941, America and Britain declared war on Japan. In 1983, the British Upper House, the House of Lords, voted to televise live proceedings of the House. In 1987, leaders of the US and the Soviet Union signed the Intermediate Range Nuclear Forces, INF, Treaty. First such treaty in which there was a provision to reduce the stockpile of land-based nuclear weapons. In 2010, SpaceX became the first commercial company to release a spacecraft, the Dragon capsule, into orbit and successfully return it to Earth.
1937 में आज ही के दिन भारत की पहली डबल डेकर बस मुंबई में चलनी शुरू हुई। 1990 में आज ही के दिन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार पृथ्वी से उड़ान भरी। 2010 में आज ही के दिन फाल्कन 9 के दूसरे लॉन्च और ड्रैगन के पहले लॉन्च के साथ स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने किसी स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ऑर्बिट में पहुंचाया और रिकवर किया। 1967 में आज ही के दिन कलवरी श्रेणी की पहली पनडुब्बी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी। ओलंपिक के इतिहास में 1998 में आज ही के दिन पहली बार महिला आइस हॉकी शामिल किया गया था। फिनलैंड ने पहले मुकाबले में स्वीडन को 6-0 से हराया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
John Lennon was an English singer, songwriter and peace activist who gained worldwide fame as the founder, co-lead, vocalist and rhythm guitarist of the Beatles. His songwriting partnership with Paul McCartney remains the most successful in history. In 1957, he formed his first band, The Quarrymen, which evolved into The Beatles in 1960. In 1969, he started the Plastic Ono Band. Some of his top 10 singles are Give Peace a Chance, Imagine, and Happy Xmas. Dear listeners, let's listen to Give Peace a Chance. Everybody's talking about magic.
आज पुण्यतिथि है भाई परमानंद अथवा पंडित परमानंद की। उनका जन्म 4 नवंबर 1876 को करियाला पंजाब में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और एक महापुरुष थे। परमानंद जी जहां आर्य समाज और वैदिक धर्म के सच्चे प्रचारक थे, वहीं दूसरी ओर एक इतिहासकार, साहित्यकार और प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की थी। भारत की स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और करतार सिंह जैसे न जाने कितने राष्ट्रभक्त युवकों ने इनसे प्रेरणा पाई थी।
Herbert Spencer was an English philosopher, biologist, anthropologist, sociologist and prominent classical liberal political theorist of the Victorian era. Spencer developed an all-embracing conception of evolution. Spencer is best known for the expression survival of the fittest, which he coined in Principles of Biology after reading Charles Darwin's On the Origin of Species.
प्रिय धीमी पड़ रही आज मेरे प्रदीप की बाती, शायद लुट जाए ये मेरी मुसाफिरी की थाती। पथ सुनसान, कटीला, टेढ़ा, पटरीला, अज्ञात, मंजिल लंबी, भ्रमित पथिक मग में छाई चिर रात। शिथिल गात हो रहे अनेकों विकट घात प्रतिघात, किससे कहे मुसाफिर अपने मन की आकुल बात। कुसमय में लप झप करने लग गई ज्योति अकुलाती, प्रिय धीमी पड़ रही आज मेरे प्रदीप की बाती। ये काव्य रचना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। आज जयंती है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। उनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को भयाना ग्राम ग्वालियर में हुआ था। वे हिंदी जगत के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता थे। उनकी मुख्य रचनाएं अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुंकुम, रश्मि रेखा आदि हैं। बाल कृष्ण नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
James Douglas Morrison was an American singer, songwriter and poet who served as the lead vocalist of the rock band The Doors. Due to his poetic lyrics, distinctive baritone voice, wild personality, unpredictable and erratic performances and the dramatic circumstances surrounded his life and early death. Together with Ray Manzarek, Morrison co-founded The Doors during the summer of 1965 in Venice, California. The band spent 2 years in obscurity until shooting to prominence with their number one single in the United States, Light My Fire, taken from their self-titled debut album. Morrison wrote or co-wrote many of The Doors' songs, and one such one is Riders on the Storm. Let's listen to Riders on the Storms.
Riders on the Storm. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed we're out alone, riders on the storm.
आज जयंती है दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा, कपूरथला, जिला पंजाब में हुआ था। उनका 24 नवंबर को निधन हो गया। अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही उनकी मौत ने सभी को मायूस कर दिया। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता थे। धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी के 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। फिल्म फूल और पत्थर के साथ उन्होंने फिल्मों में अकेले हीरो के रूप में कदम रखा। 1974 के बाद दर्शकों ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखा। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए नजर डालते हैं उनके फिल्मी सफर पर।
वीर जानता है आज मेरा भी जन्मदिन है, वो आएगा।
बेटा वो एक राजकुमार है और फिर आज का जन्मदिन है।
मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है।
की लाश है
ये? मेरी माँ है।
क्या किसी ने इनकी जान ली है?
हाँ, इस तीर को पहचानती है आप? अपनी रानी को दिखा रही थी।
ये तो शाही तीर है।
और आपके इस शाही तीर ने मेरी माँ का सीना छलनी करके इसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दी।
माझे चल, ओ माझे चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल।
Veteran actor Kalyan Chattopadhyay passed away at the age of 82. Recently, he had been hospitalized due to age-related illness and breathed his last on Sunday night. His last rites were performed at Kyoratala Mahashmanshan the same night. He started his film career in 1968 with Tapan Sinha's Apanjan.
आज जन्मदिन है शर्मिला टैगोर का। उनका जन्म 8 दिसंबर 1946 को हैदराबाद, ब्रिटिश भारत में हुआ है। उनकी गणना अभिजात्य वर्ग की नायिकाओं में की जाती है। अभिनय की शालीनता तथा मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास शर्मिला टैगोर ने कभी नहीं किया। सत्यजीत राय ने शर्मिला की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म अपूर संसार में सर्वप्रथम अवसर दिया। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।
Hey!
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.